ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है। स्मृतियां तो अनेक दिलाई है, लेकिन आज विशेष किस बात की स्मृति दिलाई है? बच्चे, तुम कितने शक्तिशाली थे। सतयुग में तन से भी शक्तिशाली, मन से भी, धन से भी। तन से कितने तंदुरुस्त थे, और तंदुरुस्त होने के कारण 150 साल की तुम्हारी आयु थी। और मन भी कितना शक्तिशाली था, जो अपनी स्वइच्छा से तुम देह त्यागते थे। इसमें भी इच्छा शक्ति चाहिए ना। तो मन भी कितना शक्तिशाली था और कितनी लंबी आयु जीते थे। फिर धन भी अकीचार था। बाबा ने आज कहा तुम अमीर चंद थे। कईयों के नाम होते ना अमीर चंद, कईयों के नाम फकीर चंद भी होते हैं। तो जो बाबा के पास आते थे, अगर किसका नाम फकीर चंद था तो बाबा उसका नाम बदल देते थे। तुम फकीर चंद नहीं हो, तुम अमीर चंद हो। किसी का नाम कांता था तो बाबा नाम बदल कर शांता रखते थे। किसका नाम चंचल था, उसका नाम बदल कर बाबा अचल रखते थे। अचल दादी दीदी का भी ऐसा ही था ना नाम, उनका भी नाम चंचल था। वो टीचर थी अचल दीदी। और कैसे बाबा ने उसका नाम चंचल से बदल अचल रखा। तो बाबा कहते हैं तुम अमीर चंद थे और अभी क्या बन गए हो, फकीर चंद। कैसे बने फकीर चंद? माया ने तुमको लूट लिया, सारी शक्ति तुम्हारी ले ली। अब फिर अमीर चंद कैसे बनोगे? जितने जितने ज्ञान रत्न धारण करोगे, माला माल बनोगे इन ज्ञान रत्नों में, तुम उतने ही धनवान बनोगे, अमीर चंद बनोगे। लेकिन फिर बाबा देखते हैं कि कई बच्चों को जब बाबा ऐसे सुनाते हैं तो कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ तो बहुत ऊंचा है, मेरे से तो संभव नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं कभी भी ऐसे निरुत्साहित नहीं बनो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों ये संकल्प आता कि मैं नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि गलत संग में आ जाते हो। क्योंकि गलत संग मिलता है, वो पुरुषार्थ करते नहीं हैं, तो हम भी समझते हैं कि वो तो करता ही नहीं है, मैं भी कैसे करूँगा। तो संग पर बड़ा अटेंशन चाहिए, किस संग में आप रहते हो। जो पुरुषार्थ ही नहीं करते उनके संग में रहेंगे तो क्या हालत होगी। इसीलिए शुभ भावना अपने अंदर रखो कि मैं सदा ये कर सकता हूँ। ऐसे कभी नहीं सोचो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो संग की भी बहुत संभाल करो, ध्यान भी रखो, पुरुषार्थ भी तेज करो। और विशेष रूप से बाबा याद के लिए तो कहते ही हैं। आज बाबा ने अपनी भी ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ बताया। शिव बाबा मेरे बाजू में बैठा है, लेकिन फिर भी मैं कैसे भूल जाता हूँ। तो शिव बाबा के साथ हूँ, शिव बाबा को रथ दिया है मैंने अपना, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ। तो मैं ही भूल जाता हूँ तो बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी बाबा को याद करने में। तो बाबा भी समझते हैं, लेकिन बच्चे पुरुषार्थ में निरुत्साहित नहीं बनना, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। लौकिक में भी, दुनिया में भी देखते हैं, जहाँ प्राप्ति बहुत है वहाँ पर तो दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। तो तुम बच्चों को भी कभी भी निरुत्साहित नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, अपना पुरुषार्थ तीव्र करते रहना है। तो सारी मुरली आज की इसी पर है, सतगुरु बाबा की विशेष ये हमारे प्रति प्रेरणाएं हैं। आज 7/8/2025 है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप वसंत। कैसे बनेंगे फकीर से अमीर? रूप भी बनना है, योग युक्त भी रहना है और ज्ञान धन का दान भी करना है, तो बसंत भी हो। तो मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? पुरुषार्थ में सदा तत्पर तब रह सकेंगे जब अपने प्रति शुभ भावना होगी ना, कि मुझे तो ऊंच बनना है, मुझे ऊंच पद पाना है। तो कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा, अब क्या शुभ भावना रखो, कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, सर्व शक्तियां सर्व गुण जिनका वो सागर है वो बाबा से हमने लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। थे मेरे पास ये सारे गुण सब शक्तियां इतनी संपत्ति, अब फिर बाबा से हमें ये लेना है, उसके लिए सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। अगर थोड़ी समझते कि वो शक्ति नहीं है पुरुषार्थ करने की, तो सेवा करो, सेवा से भी शक्ति आ जाएगी। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहाँ ले चलो? चित चैन जहां मिले तो वहीं ले चल। ओम शांति। ये है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए, कंगाल बन गए, भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। हमारी मनोहर दादी बहुत अच्छा सुनाती थी, बाबा कहते थे ना, बच्चे तुमको मैंने इतना धनवान बनाया, क्या कर क्या कहाँ किया सब धन, इतना धन माल तुमको दिया था, सब कहाँ कर दिया? तो मनोहर दादी कहती है बाबा को, कहते बाबा आपके ही तो मंदिर बनाए, कितने मंदिर है शिव के, बड़े बड़े मंदिर है, आपके लिए ही तो खर्च किया, आपके प्रति सब कुछ किया। लेकिन बाबा कहते भक्ति करते करते और कंगाल हो गई, बेगर बन गए। वो बेगर्स तो फकीर है, और तुम वो बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। फकीर वैसे पहले उनको कहते थे ना, जो ऐसे नहीं कि उनको कोई धन की कमी थी, लेकिन बिल्कुल बेहद का जैसे वैराग्य होता था, कभी भी धन की लालच नहीं होती थी, तो जैसे फकीर ही थे, उनको फकीर कहते थे, ज्ञानी बहुत थे। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम और किस्म के बेगर्स हो, सब है लेकिन बेहद से न्यारे, बेहद के न्यारेपन में। तुम अमीर थे अब फकीर बने हो, ये किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। यही समझे कई तो ये भी नहीं समझे कि भारत कभी बहुत धनवान था, वो यही समझे भारत तो सदा ही गरीब था। तो बाबा कहते हैं ये किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है। क्या करना है इस पढ़ाई को? अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है, और धारण कराने की कोशिश करनी है। सब तो नहीं होंगे इतने होशियार जो औरों को धारण करा सके, लेकिन कोशिश तो करनी है औरों को भी धारण कराने की। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको तो जलाया जाता। अब आत्मा निकल गई तो शरीर तो कोई काम का नहीं, तो उसको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाया जाता है। आत्मा को तो नहीं जलाएंगे, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक तो नहीं जलाएंगे। आत्मा ही निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं, तो फिर जलाएंगे। आत्मा को तो नहीं जलाते हैं, हम आत्मा हैं। सब जब से रावण राज्य हुआ है तब से क्या हुआ है, मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं ये पक्का हो जाता है, द्वापर से ये कितना पक्का हो गया कि मैं शरीर हूं। आत्मा तो अमर है, अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अपनी मर्जी से। तो आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी, तो मन भी कितना शक्तिशाली होगा जो अपनी मर्जी से करते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि क्यों ये इतनी शक्ति है, क्योंकि वहां आत्मा मालिक है या इंद्रियां मालिक हो गई है, इसीलिए आत्मा भी बेखबर हो जाती है कि ये अभी मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि आत्मा मालिक है वहां। जब चाहे शरीर छोड़े, वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। तो मिसाल कौन सा बाबा देते हैं, स्वेच्छा से शरीर छोड़ना इतनी मन को शक्ति है, सर्प का मिसाल बाबा देते हैं। तो सर्प में भी कितनी शक्ति होगी जो अपनी स्वेच्छा से खाल को उतारता है। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है, शरीर रूपी चमड़ी पुरानी एकदम अंतिम जन्म की ये चमड़ी है। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति थोड़ी कम होती है तो जरूर आयु में भी तो फर्क पड़ता होगा ना, आयु भी कम हो जाती होगी। आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है, 150 साल ये फुल आयु है मनुष्य की। फिर त्रेता में 125 साल, अगर ऐसे करेंगे 12 जन्म है तो समय तो उतना ही है, 1250 तो 125 साल। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, ये हमारा पुरुषार्थ हो, पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु नहीं होती है, मन की ताकत है, इसीलिए ऐसे नहीं अनजाने में या पता ही नहीं चले और आत्मा शरीर से निकल जाए। वहां ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु नहीं होती, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, बाबा भेंट कर रहे हैं, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए कहते हैं ना योगियों की आयु लंबी होती है, भोगियों की आयु तो छोटी होती है, क्योंकि तन मन सब हर प्रकार से अपनी शक्ति को गंवाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। आत्मा की पवित्रता भी खत्म, शरीर की ताकत भी खत्म, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल, तीनों प्रकार की शक्तियां नष्ट करते हैं, तो फिर आयु भी छोटी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं एक तो पवित्र बनना है और फिर याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हैं, बाप से क्या लेते हैं, शक्ति का वर्षा लेते हैं। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पवित्र आत्मा होगी तभी तो मन भी शक्तिशाली बनेगा, तब तो शक्ति ले सकेंगे। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है बाप से। तो ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। शुभ भावना रखो कि हम फिर से सतो प्रधान जरूर बनेंगे, थे हम फिर से बनेंगे, तो ये शुभ भावना रखो। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे, कोई तो सतो भी तो होंगे ना, इसलिए हम सतो ही सही नहीं। अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। अब निश्चय नहीं होगा तो सतो प्रधान बनने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, ये प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। फिर खिसक जाते हैं, हम कैसे बनेंगे, 108 तो वो तो अभी तो बन गए होंगे, हम कैसे आएंगे उसमें, 8 में तो हम कभी भी नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे संकल्प चलते हैं तो फिर खिसक जाते हैं, पुरुषार्थ हीन हो जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। अब सतो प्रधान तो बनी नहीं है ना, देवता बने कहाँ है, तो फिर भी चलो तमो प्रधान न भी होगी तो तमो, चलो तमो से भी और ऊंचा तो रजो। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है, आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है। कैसे बनाएंगे सतो प्रधान, बाबा की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, अब बाबा कर्मों की गुह्य गति बताते हैं। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी, तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आशीर्वाद दुआएं उनको मिलती रहती थी। तो बाबा कहते तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी, सेंटर खोला उसके लिए धन भी दिया। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए और विश्राम पाए। आत्मा आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है। धर्मशाला बनाएंगे तो कोई आएंगे रागीर, उनको स्थान चाहिए रहने का, तो उनको रहने का स्थान मिल जाएगा। तो रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा। कितनों ने धर्मशालाएं बनाई होगी, लेकिन बहुत करके धर्मशालाएं जो पुरानी पुरानी हैं उन्होंने किसी धर्मशाला बनाने वाले का नाम नहीं है, कोई न कोई देवता पर या कुछ न कुछ पर रखते। पर आजकल तो कुछ भी बनाएंगे तो पहले अपना नाम डालेंगे, अपना नाम करेंगे। तो बाबा कहते हैं गुप्त दान माँ कल्याण तो हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो उसकी उसकी आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छे मिलेंगे उनका, वो बहुत धनवान भी होगा, मकान खूब होंगे, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होगा फिर। अब एक सुख तो मिलेगा, मकान मिलेंगे, पर बीमारी तो थोड़ी कोई पूछ के आती है, तो अपना कोई ऐसा हिसाब किताब होगा तो बीमारी तो आएगी, भले कितना भी कितने भी मकान होंगे। फिर ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि तो होते ही नहीं है, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल कोर्ट पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। सोचो क्या क्या नहीं होगा जो कलयुग में तो बढ़ता ही जा रहा है, पर सतयुग में ये बिल्कुल नहीं होगा। हॉस्पिटल कोर्ट पुलिस आदि कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं, ये भी एक लिस्ट बन सकती है, यहाँ वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ ये होगा ही नहीं, तो वहाँ वजीर भी होता नहीं। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वो फिर वजीर की राय थोड़ी लेंगे, राय तब मिलती है, किनको राय लेनी पड़ती है, जो बेअकल है, अकल ही नहीं है अपनी, तो फिर अनेकों से राय लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, द्वापुर से बेअकल माया ने बनाया तो कई वजीर मिले, जब विकारों में गिरते हैं तब बेअकल बनते हैं, तो फिर अनेक राय बहादुर बन जाते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं, कैसे विनाश करें, विनाश के हथियार बनाएं, हाँ, क्योंकि तुच्छ बुद्धि हो गई है। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, विज्ञान से हम कितना ऊंचा बना रहे हैं विश्व को, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, तो तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर दैवी राज्य स्थापन करके फिर क्या होगा, फिर हम राज्य करेंगे, हाँ है ना नशा, फिर हम ही राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, अब वो सब करने लिए क्या करना होगा, गाया भी जाता है फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको फॉलो करो, फॉलो फादर, फादर शो सन, पिता बच्चे को आगे बढ़ाता है, फिर बच्चा हाँ पिता की सेवा करता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा, अब बाबा देखो कैसे पुरुषार्थ करते हैं, इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। बहुत लोग पूछते हैं ना, आप इनको इतने इतने बड़े बड़े चित्र आपने रखे हैं, इनको आप ब्रह्मा कहते हो, तो क्या इनको या भगवान मानते हो या इनको आप देवता मानते हो, क्योंकि ब्रह्मा मानते हो ना, ब्रह्मा को तो देवता कहते हैं, तो हम या आपका ये गुरु है, तो या तो भगवान मानते हैं, या तो देवता मानते हैं, या तो गुरु मानते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये तीनों ही नहीं है, भगवान तो मानते ही नहीं है, उनको हमारा गुरु भी नहीं मानते हैं, देवता भी नहीं मानते, परंतु वो हमारा अलौकिक पिता है, बस अलौकिक पिता का फोटो क्यों नहीं रखेंगे, कोई अपने कोई ने के पिता ने शरीर छोड़ा, परंतु ऐसे थोड़ी कि पिता का फोटो नहीं रखेंगे, तो ये हमारे अलौकिक पिता है। तो बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते हैं, ये तो पतित था, हाँ गृहस्थी था ना, तो बाबा कहते ये तो पतित था, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है, झाड़ में देखो पतित शरीर में प्रवेश किया, तो झाड़ में कहाँ खड़े हैं ब्रह्मा बाबा, बिल्कुल चोटी पर, एकदम जब जर्जरी भूत अवस्था है झाड़ की, वहां पर खड़े हैं ब्रह्मा बाबा, तो झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं, तो नीचे वो बैठा है तपस्या कर रहा है और फिर देवता बनता है, पर ऊपर जो खड़ा है वो उनकी अंतिम अवस्था कलयुग का अंत में खड़ा है। तो बाबा कहते हैं पतित है फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं, तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, शूद्र कोई तपस्या नहीं करते, तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, न देवताएं तपस्या करेंगे न शूद्र तपस्या करेंगे, ब्राह्मण तपस्या करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। भले मुरली सुनाएंगे लेकिन बाबा की याद नहीं है तो सुनाने में भी वो ताकत नहीं आएगी, वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती ही है शिव बाबा की याद से। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद ले लेंगे। नहीं करेंगे याद तो विकर्म तो रह जाएंगे ना, फिर सजाएं खाकर कम पद पा लेंगे। तो मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का तो किसको पता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते भी थे नॉलेज का पता नहीं, इसीलिए आगे के ऋषि मुनि क्या कहते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। नेति का मतलब ही है नहीं अंत, हम नहीं जानते उनका अंत। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे, इन पांच विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। हाँ, पेनी का भी कुछ तो होता है ना, पाउंड में 100 पेनी होते हैं, तो इसीलिए एक पेनी का भी बहुत उसका होगा ना कुछ तो भाव, क्योंकि पाउंड की कीमत इंडिया के रुपए की भेंट में बहुत ज़्यादा है, 100 रुपए से भी ज़्यादा। कितना है गोपी बहन पाउंड कितने आए? 100 से ऊपर, 100 रुपए से भी ऊपर। हाँ, 108 रुपया। तो कहाँ तो रुपए की कोई क्या वैल्यू है, तो समझो एक पेनी वहाँ और इंडिया का कितना, एक रुपया ऐसे कहेंगे कितना होगा। देखो तो बाबा कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया, हाँ तो कुछ तुम भी कुछ भी आगे नहीं जानते थे, इन पांच विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। इस कलयुगी दुनिया का कुछ अंश भी नहीं रहेगा, सतयुग में कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं, आपका खर्चा कैसे चलता है, बहुत पूछते हैं, आप क्या फंड्स लेते हो, क्या सरकार आपको मदद करती है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम उनको कहो कि तुम सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। हम अपने ही तन मन धन से सेवा करके भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्री मत पर करते तो है तन मन धन से, पर श्री मत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्री मत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। गांधी जी ने भी तो उनको भी बहुत धन देते थे कि आप राम राज्य बनाएंगे, हम आपको तन से भी सहयोग दिया, मन धन सबसे सहयोग दिया गांधी जी को। परंतु उसने ये नहीं कहा गांधी ने कि श्री मत पर हम राम राज्य स्थापन करते, हम राम राज्य लाएंगे, इसलिए तन मन धन का सहयोग दो। परंतु श्रीमत से ये तो केवल भगवान ही कहते हैं, तो कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। अब गांधी जी में तो श्री श्री 108 बाप नहीं थे ना, पर ब्रह्मा तन में तो श्री श्री 108 बाप परमात्मा खुद बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं, माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं। जो 108 की माला के अंदर आएंगे वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। 108 नंबर वार तो बहुत हैं, जो अच्छी मेहनत करते हैं नंबर वार है सब। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो कौन से शालिग्राम होंगे जो शिव के साथ पूजे जाते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होगा। तो रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं ये भूलने से दे अभिमान आ जाता है। दे अभिमान क्यों आता है, मैं आत्मा हूं ये भूल गए। समझते हैं मैं फलाना हूं, किसको भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है पर मैं तो आत्मा हूं। हम आत्मा कहां से आती है ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहां पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। तो बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, अंडरलाइन, अब गफलत छोड़ो। माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो। अगर कोई योद्धा गफलत करे, उसको नींद आ रही है अभी युद्ध के मैदान में नहीं जाऊंगा, तो चलेगा क्या? तो माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो। तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है, गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इसका भी अर्थ नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा कितना समय, बहुकाल कितना जो अलग रहे, इनका भी अर्थ वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। परमधाम में तो हम साथ थे ना, तो अलग कैसे हुए, कब फिर मिलेंगे, दुनिया में तो कोई नहीं जानते। तो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है, वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। शिव बाबा को केवल शिव बाबा ही कहना चाहिए, नाम तो बहुत है शिव के, सहस्र नाम है शिव के, लेकिन हम थोड़ी कहेंगे रुद्र बाबा या फलाना बाबा। शिव बाबा को एक ही नाम देंगे शिव बाबा, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। अब शिव के अनेक नाम है, लेकिन कितने लोगों पर शिव के नाम है। हाँ, शिव के नाम है, बाबा ने मिसाल दिया। अब किसी भाई का नाम हो विश्वनाथ, जैसे कि विश्व का वो नाथ है, अरे ये तो विश्व का नाथ कैसे हो सकता है, एक मकान भी उसके नाम पर नहीं होगा और नाम रखा है विश्वनाथ। चलो माँ बाप रखते हैं, समझते हैं कि ये शिव के नाम है, कितने नाम रखते हैं, अमरनाथ भी नाम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको बस एक ही नाम लेना है शिव बाबा, क्योंकि शिव में के जितने भी अर्थ है वो सब परमात्मा से ही लगते हैं। तो अपने ऊपर भी शिव नहीं रखना है। एक भाई हमारे जेपी भाई के छोटे भाई, तो उसका नाम ही शिव था। बाबा ने कहा तुम शिव थोड़ी हो, शिव बाबा तो एक ही है, तो उनका नाम बदल के शिव कुमार रखा। तो शिव कुमार, तुम शिव के बच्चे हो ना, शिव थोड़ी हो। तो अभी जैसे छोटे बच्चे का नाम शिव होगा, अरे शिवा, तो शिव तो जैसे कि भगवान को बुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, बस कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी शिव कहते हैं, काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ भी नहीं हूं, अब शिव बाबा वास्तव में विश्वनाथ तो बनता ही नहीं है, विश्व पर राज्य तो करता ही नहीं है शिव बाबा, वो तो केवल परम धाम का नाथ है, मालिक तुम्हारा का, या तो हम बच्चे बनते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व का के नाथ तो तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व का नाथ तो तुम बनते हो, ब्रह्म तत्व के भी तुम नाथ बनते हो, घर के आप मालिक तो बनते हो ना, शिव बाबा तो बाबा कहते मैं नाथ बनता ही नहीं हूँ, नाथ माना राजा, तो वो तो मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है सतयुग। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। नाथ नहीं बनते शिव बाबा, मेरे को कहते ही है वो शिव बाबा, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं ना, ग्रंथ में आता है मूत पलीती कप्पड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। महिमा भी गाते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, बहुत महिमा गाते हैं। अकाल मूरत अजोनी माना अजोनी अर्थात जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, शिव बाबा कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। अब ब्रह्मा बाबा देखो क्या कहते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बैठे हुए हैं, बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा को घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है शिव बाबा, मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती होगी। ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते हैं ना शिव बाबा को, फिर बाबा कहते थे जिसके माथे मामले उनको नींद कैसे आएगी। ब्रह्मा बाबा को तो कितनी पत्र आते थे, कितनी समाचार मिलते थे, कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई क्या, कोई सेंटरों के समाचार, तो बाबा को तो बहुत बुद्धि चलती थी ना, कैसे उनको क्या समझाएं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं एकदम इकट्ठा है। शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा एकदम इकट्ठी इकट्ठी बैठी है। जानता हूँ मेरे पास है शिव बाबा, इस शरीर का जैसे वो मालिक है। ब्रह्मा बाबा ने अपना रथ भी शिव बाबा को दे दिया। हाँ, जैसे गुलजार दादी भी यही कहती थी ना, बाप दादा की प्रवेशता होती थी तो गुलजार दादी का के वश में कुछ भी नहीं था। कई बार मिसाल दादी देती थी, दादी को बहुत खांसी थी, बहुत खांसी थी, सबने कहा दादी बाबा को कहो कि बाबा आज छोटी मुरली चलाए क्योंकि खांसी बहुत है। दादी ने कहा मैं तो कभी नहीं कहूँगी छोटी मुरली चले, बाबा जाने रथ मेरा थोड़ी है, उस समय तो शिव बाबा को रथ दे दिया है, बाबा जाने। और सचमुच सबने कहा छोटी मुरली चला और सबसे लंबी मुरली चली और खांसी बिल्कुल नहीं आई। शिव बाबा ने रथ को कैसे वश में किया। तो बाबा कहते, तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही कहते थे, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर मकान दिया है, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को ये मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा एक कोने में बैठी है। बड़ा आदमी हुआ ना तो बड़े आदमी को तो ज्यादा स्पेस देता हूँ, मैं तो छोटे कोने में बैठा हूँ। तो विचार करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, शिव बाबा मालिक है, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ अब उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं, शिव बाबा ही संभाल करते हैं ब्रह्मा के रथ की। मुझे शिव बाबा सिखाते भी हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, शिव बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं तो सब शिव बाबा को अर्पित किया, अब शिव बाबा मुझे खिलाते हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातरी करेंगे ना, शिव बाबा मेरी संभाल ठीक करेगा, खातरी तो कुछ करेंगे ना, इस खुशी में खाता हूँ ब्रह्मा बाबा। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। कितना बाबा नम्र होकर के निरहंकारी होकर के बताते हैं, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ कि मैं ही भूल जाता हूँ तो बच्चों को कितनी मेहनत लगती होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, थोड़ी सी बात हुई तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं। हाँ, बाबा ने आज बहुत सुंदर शब्द बताए, बाबा बाबा कह, हाँ बाबा की संस्कृत सुनो, बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। बाबा बाबा भी कहते हैं और फिर फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बना बनती, बाबा आप मेरे हो ये भी कह देते, तो बाबा को अपना बना बनती, फिर ज्ञान भी सुना बनती, सबको ज्ञान भी सुनाते हैं, पशंती मना धारण करंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, यज्ञ में तो बहुत रास चली ना शुरू में, रास करंती, फिर अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको ही फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं, महारथी कहलाने वाले, इतनी सेवा करने वाले, वो भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं, अब रास्ता बताते हैं बाबा, पर ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, हाथ से पकड़ करके नहीं, हाथ से पकड़ के ले जाते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, इन आँखों से तो अंधे नहीं है ना, वो तो जो जिनको आंखें नहीं है दिखाई नहीं देता उनको चलो हाथ पकड़ के ले जाते हैं, पर इन आंखों से तो अंधे नहीं है, तो हाथ पकड़ के ले जाने की बात नहीं है। हाँ, इन आंखों से अंधे नहीं है, पर कौन किस रूप में अंधे हैं? हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में ये अवस्था रहे, आप ये तब रहेगी जब बहुत काल का अभ्यास रहेगा। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका ही उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव, तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। अभी तो बहुत मुश्किल होगा, पहले तो बाबा के समय बहुत परिवार ऐसे थे, बिल्कुल जॉइंट फैमिली, एक ही किचन, सब एक ही किचन में हम ये से लेते थे, तो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं, कहाँ तो फिर एक ही घर में, कहाँ तो सब मिलकर रहते हैं, और कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य, तो कोई फिर धर्म कोई नहीं मानते, कई तो ऐसे नास्तिक होंगे भले उस घर में रहते हैं, पिताजी इतना भक्त और बेटा नास्तिक, ऐसे भी होता है, तो कोई फिर धर्म कोई नहीं मानते, थोड़ी बात में नाराज हो पड़ते, तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा, अपना भी कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्री मत पर फिर से स्थापन कर रहे हैं, याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। कितना सहज है सब ये खेल है। श्री मत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे, बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं ना, कोई ऐसे नहीं कहते हैं तुमने इतने पाप किए अभी चढ़ो फांसी पर, नहीं, बाबा कहेंगे हाँ याद की फांसी जरूर है तो इस पर चढ़ो, तो देखो सब पाप मिट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, एक तो कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, पवित्र बनो, और दूसरा बाप को याद करो, यही बाबा कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। सत्युग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, थोड़े हैं, अभी की तरह नहीं है जनसंख्या। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती है, परम धाम खाली होने लगता है ना, सब आत्माएं नीचे आ जाती है, ये बना बनाया खेल है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है, दोनों होते हैं। जो उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करता है उसको देख करके हमारे में भी उमंग उत्साह आता है, और कोई अलबेला है तो उसको देख के फिर हम भी अलबेले बन जाते हैं, तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं अलबेले, क्या सोचते हैं, सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। तो कौन, तो संगठन में तो सब प्रकार के हैं, लेकिन किसका आप सहयोग लो, जो संगठन में अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, एक उदाहरण बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, मुझे करके फिर औरों को कराना है, तो ये लक्ष्य को बार बार इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है तो क्या करो, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। कई कहते ना, मैं कैसे फास्ट जाऊं, तो व्यर्थ और साधारण संकल्पों में समय नहीं गवाओ, तो लास्ट सो फास्ट जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एक है लास्ट सो फास्ट और दूसरा है लास्ट में फास्ट, है ना। लास्ट में फास्ट भी कई सोचते हैं, लास्ट में फास्ट चले जाएंगे, पर उसके लिए भी तो अभी पुरुषार्थ करना है ना। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता है, याद किया नहीं जाता है, उसकी याद स्वतः आती है। स्वतः याद तब आती है जब उसे प्यार है। ये बंदर भी मुरली सुनने आए हैं, ये बंदर आए हैं मुरली सुनने के लिए, तो उसे याद किया नहीं जाता है। जो प्यारा होता है उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, प्यार कैसा हो, दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ प्यार हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। हर एक को कोई ना कोई स्वार्थ होगा, एकदम निस्वार्थ प्यार तो बाबा कहते हैं किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। हाँ, या एक है याद आना, दूसरा याद करना, तीसरा है याद में समाना। तो बाबा क्या चाहते हैं, कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अभी दादी जी का महीना चल रहा है, तो आज 7 तारीख है। दादी जी की विशेषताएं सुनते हैं। सतो प्रधानता के गुण द्वारा तमो गुण को विदाई दिया दादी ने। दादी जी कहती कि मेरे पुरुषार्थ का तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, सत्व गुण धारण करने हैं, बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं उन्हें खत्म करना है। मैं सवेरे से रात तक चेक करती हूँ कि देवता पद की क्वालिफिकेशंस मेरे में कहाँ तक आई है। दादी जी क्लास कराते थे तो अपना पुरुषार्थ बताते थे कि मैं सवेरे से रात तक चेक करती हूँ कि देवता पद के क्वालिफिकेशंस मेरे में कहाँ तक आई है। देवता माना ही, देवता माना ही सत्व गुण, देवता माना ही सत्व गुण। तो सत्व गुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो, अंग अंग जिनके शीतल, हाँ, तो पहले पहले अपने को शीतल करो। शीतल बनने से क्या होगा, शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, पहले अपने आप को शीतल करो, फिर नशा रखो कि हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो बुद्धि कभी नीचे की बातों में नहीं जाएगी। अभी हमारी बुद्धि देह देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। देह के साथ रहती आत्मा, लेकिन व्यवहार हमारा श्रेष्ठ हो। चलो अभी बाबा को भोग लगेगा, शशि बना रहे हैं। फोटो सेशन है क्या, है ना?
नहीं उठाया।
कई पूछ रहे थे फोटो सेशन के लिए, लेकिन मैंने सुना रमेश भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए फोटो सेशन नहीं होगा ना।
ओम शांति। आज हम सबके लिए बहुत ही प्यारा दिवस है। जब सतगुरुवार आता है तो सब बच्चों के मन में बाबा से प्यार, बाबा से मिलने की मीठी मीठी रूहान करते हैं और बाबा से बहुत ही प्यार प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन हम सब मिलकर के बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो वतन में कौन जाएगा? सारे जाएंगे या थोड़े जाएंगे? सबको जाना है ना। बाबा अकेले आपका भोग स्वीकार नहीं करते। बाबा हमेशा भोग के टाइम कहते थे सब बच्चों को, बच्चे आओ बच्चे आओ, तो सबको बुलाएंगे बाबा। जो नहीं जाएगा फिर वो देखेगा कि बाबा तो बुला रहे हैं, हम तो गए नहीं हैं। इसलिए सबको आज बाबा के पास जाना है और बाबा को सामने बिठा करके, बाबा के सामने बैठ करके भोग स्वीकार कराना है। और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो आपको सुनाया जाएगा और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। 1 लाइन होगी भाइयों की और 1 यहाँ पर लाइन होगी टीचर्स बहने और माताओं की, और 2 लाइनें होंगी, 1 लाइन और होगी भट्टी की माताओं की, और 2 लाइनें होंगी उधर। और भोग के बाद 1 तो गोपी बहन और फरीदकोट की 2 बहनें मंच पर आएंगी अमृत पिलाने के लिए। मधुबन की बहनें तो है ही है, लेकिन गोपी बहन और फरीदकोट की गोपी बहन और फरीदकोट की 2 बहनें आएंगी मंच पर अमृत पिलाने के लिए। अभी हम सभी कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ चलोगे? बोलो ना, बाबा के पास। ऊपर की आवाज सुन रहे थे क्या आप? तो बाबा को याद कर रहे हैं, ऊपर से भी आवाज आती है। बंदर भी सोचता है कि ठीक है, ये अगर बाबा को याद नहीं करेंगे, माया बंदर के रूप में थोड़ा सा खींच लेती, ध्यान रखना है ना। हाँ, शीलू बहन ने बहुत अच्छी बात बताई, वो मुरली सुनने आते हैं, आप सबको एंटरटेन करते हैं। ओम शांति भवन में आना कोई कम बात थोड़ी है। तो शीलू बहन ने मुरली सुनाई, उन्होंने प्यार से सुनी और जोर जोर ठक से तालियां बजाई। अभी आप भी तालियां बजाओ, ठीक है? अपने लिए ताली बजाओ अभी। अब उसके बाद बस, अब उसके बाद किसके लिए बजाएंगे ताली? बाबा के लिए बजाओ ना। और फिर बहुत खुशी में, आज सारा दिन बहुत खुशी में रहना है। बाबा मिला और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना? सब कुछ मिल गया तो आज हम सब खुशी खुशी बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे सुनेंगे। उसके बाद फिर से बताती है, 1 लाइन भाइयों की होगी और 2 लाइन या टीचर्स बहने और भट्टी की माताएं, और 3 लाइन भट्टी की अन्य माताएं यहाँ पर, और बाकी बहनें जो हैं वो 2 लाइन में उधर आएंगी। लेकिन बहनों से एक हमारा निवेदन रहेगा कि बहने बाबा की बहुत बहुत लाडली हैं, और जब बाबा के प्यार में खो जाती हैं उनको भूल जाता है कि हमें कहाँ खड़ा होना है, वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनको लाइन में आना है, अगर लाइन में नहीं आएंगे तो बैठ जाना, धीरे धीरे आना, 5 मिनट में आपको अमृत मिल ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के
छोड़ेंगे तेरी याद। का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे।
सत गुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा दूर से आते दिखाई दे रहे थे। बाबा के फेस के पीछे सूर्यमुखी फूल था और उस सूर्यमुखी फूल से अलग अलग प्रकार के लाइट्स निकल रही थी और बाबा के द्वारा चारों ही तरफ वो लाइट की किरणें फैल रही थी और जैसे बाबा दूर से आते हुए आए तो एक पहाड़ी पर खड़े हो गए। पहाड़ी से ही बाबा सारे विश्व का अवलोकन कर रहे थे तो बाबा ने जैसे मेरे को देखा तो कहा कि आओ बच्ची। तो मैंने कहा बाबा आप तो पहाड़ी पर हैं, मैं नीचे हूँ। तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें की जैसे ना कोई झूला बन जाता है, झूले से एक सेकंड में लिफ्ट की तरह बाबा के पास पहुंच गए। मैंने कहा बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा बाप जानते हैं हर बच्चे का स्नेह सूर्यमुखी फूल की तरह है, और उस स्नेह के कारण बाप भी उन बच्चों के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं। आज के दिन बाबा देश विदेश के सभी बच्चों के पास गए थे और बच्चों से मिलन मनाया और बच्चों की रौनक देखी। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा ने बच्चों की रौनक देखी है, उस समय मैं क्या देखती हूँ कि बाबा और हम पहाड़ी पर खड़े हैं, नीचे एक बहुत सुंदर बगीचा है और बगीचे में एक तरफ फूल हैं और एक तरफ बहुत अच्छे अच्छे फल हैं और एक तरफ झूले लगे हुए हैं और एक तरफ जैसे ऊंचाई को चढ़ कर के कहाँ ऊंचे स्थान पर पहुंचने का था। तो उस समय सब बच्चे दिखाई दिए, कई बच्चे तो फूलों को इकट्ठा करके ऐसे टोकरी भरते जा रहे थे, कई बच्चे फलों को इकट्ठा कर रहे थे और कई बच्चे क्या है देख रहे थे, कहते हैं पता नहीं हमारा हाथ पहुँचे या नहीं पहुँचेगा, वो सीढ़ी के ऊपर ऊंचाई पर जाने के लिए हिम्मत नहीं रख रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चों की महफिल में आज बाप ने क्या देखा है, बाप ने जो ज्ञान रतन बच्चों को दिए हैं, कई बच्चे केवल ज्ञान रतन जमा करते हैं लेकिन उसका प्रयोग जो है वो कम करते हैं। क्योंकि बाबा ने जैसे देखा वो फूल थे, तो कई बच्चे तो फूलों का सुंदर डिज़ाइन बना रहे थे, कई बच्चे गुलदस्ते बना रहे थे, कई फूलों की माला बना रहे थे, कई फूलों को इकट्ठा कर रहे थे, और दूसरे प्रकार के बच्चे थे जो फलों को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे उनको अहम आता था वो फल एकदम धीरे धीरे सुकड़ता जाता था और उसकी शक्ल बदलती जाती थी, और जैसे वो बच्चों को लगता था कि बाबा का ये दिया हुआ प्रसाद है उससे क्या होता था, वो फल इतना बड़ा और उसका स्वरूप बदलता जाता था। फिर बाबा ने कहा तीसरे ऐसे बच्चे हैं उनको हर प्रकार का साधन है लेकिन हिम्मत नहीं रखते हैं, हिम्मत ना रखने के कारण कभी पुरुषार्थ में थकावट आती है, और जैसे उनको थकावट आती है तो क्या करते थे, वो बाबा बाबा चिल्लाना शुरू कर देते थे। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को चिल्लाने का समय नहीं है, अभी बच्चों को क्या करना है, बाप के साथ मिलन मनाने का समय है। इसलिए पुरुषार्थ के अंदर जो बार बार बच्चों के अंदर हिम्मत खत्म हो जाती है, तो बाबा ने फिर क्या किया, उस समय ऐसे ही पहाड़ी से एक बहुत सुंदर गोल्डन चेन भेजी, गोल्डन रस्सी थी, उसको पकड़ना था, और गोल्डन रस्सी में भी तीन प्रकार की बातें लिखी हुई थी। एक था मैं बाबा का, बाबा मेरा, दूसरा था बाबा मेरा कंपेनियन, तीसरा था कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर वरदानी हाथ है। तो जैसे वो तीनों उस चीज़ें सामने आती थी उसको हाथ लगाते थे तो फरिश्ते की तरह उड़ करके बाबा के पास पहाड़ी पर पहुंच जाते थे। तो बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को क्या करना है, अभी समय ऐसा बता रहा है, हिम्मत को हारना नहीं है लेकिन बाबा कंपेनियन है, सब कुछ हमने बाबा को दिया है तो बाबा हमारे साथ हैं। फिर बाबा तो सबको भरपूर कर रहे थे, और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा बच्ची बाप को मालूम है कि आज बाप के सामने बाबा के घर में कौन बच्चे आए हैं। तो मैं तो कहा बाबा बहुत से बच्चे आए हैं, बाबा ने कहा, ऐसी भूमि से आए हैं जो यज्ञ के इतिहास के अंदर भी बहुत नाम है और शेरे पंजाब। लेकिन फिर बाबा ने कहा, नहीं, ये क्या करने वाले बच्चे हैं, फरीदकोट से हैं। मैं कहा, बाबा ऐसे ही है। तो बाबा ने कहा, फरीदकोट नहीं, क्षमा पर परवाने होने वाले हैं और भक्तों की फरियादें सुन करके उनकी कामनाओं को भरपूर और उनकी कामनाओं का भावना का फल देने वाले हैं। तो बाबा को भी बच्चों पर नाज है। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार से, बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को एक ऐसा दिया, गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था हार्ट के रूप में, और बाबा ने वो सब बच्चों को दिया। उस हार्ट के अंदर ये लिखा हुआ था, बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में। तो वो दिया, बाबा ने कहा, जो बच्चे बाबा को दिल से अपने दिल में बसा लेते हैं तो बाबा हर समय उनको हर परिस्थिति में मदद करता है। और बाबा तो बच्चों को अपने दिल तख्त पर ही बिठा करके सदा ही विशेष अनुभव कराते हैं। इसलिए बच्चे समय अनुसार, अभी समय है कि बाप के दिल तख्त पर विराजमान हों, क्योंकि आगे चल कर के परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी हैं जो कि बच्चों की स्थिति को कभी भी डावाडोल करे, उससे पहले अपने आप को संभाल लेना है और बाप के दिल पर तख्त पर विराजमान होना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया, और जिन्होंने भी बाबा को याद दिया था, बाबा ने कहा, पहले से ही बाबा ने उनको सामने बुला करके उनको बहुत ही बात कर ली है, याद दिया है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।